पृष्ठ संख्या 333, नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज। 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास इतना उन्नत हो जाता है कि वह विभिन्न संक्रियाओं को संगठित करके उच्च स्तर के संक्रियाओं का निर्माण कर लेता है। अब वह संक्रियाओं के निराकरण हेतु न केवल एक ही हल को ढूंढता है, बल्कि वह अपने प्रयासों से परिकल्पनाओं के आधार पर एक प्रश्न के अनेक उत्तर ढूंढ लेता है। वह समस्याओं के निर्माण हेतु अमूर्त नियमों का निर्माण कर लेता है। इस अवस्था के बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। उनके चिंतन, तर्कन, विश्लेषण, वर्गीकरण आदि क्षमताओं में परिपक्वता, शुद्धता एवं परिष्कृतता आने लगती है। अब वह कहानी और कविताएं भी लिखने लगता है, चित्रांकन करने लगता है और अपने भावों अथवा विचारों को ब्रश एवं पेंट की सहायता से कागज पर उतारता है। वह अमूर्त चिंतन के द्वारा विज्ञान के कई प्रश्नों का समुचित हल स्वयं ही ढूंढ निकालता है। इतना ही नहीं, वह विज्ञान के तथ्यों को जानने के लिए मंथन करता है और वैज्ञानिक खोजों के लिए लगनशील होता जाता है। सारांश में, बालक इतना काबिल हो जाता है कि वह अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं ही कर लेता है, साथ ही दूसरे लोगों की समस्याओं को भी सुलझा देता है। अब वह समाज के बारे में भी सोचता है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। वह नवीन आविष्कारों, नई सूझबूझ, नवीन विचार से समाज एवं राष्ट्र को नई दिशा देता है। वह राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाता है। पृष्ठ संख्या 334। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मुख्य रूप से निम्न योग्यताओं का विकास होता जाता है। नंबर 1, तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास। नंबर 2, समस्या समाधान की योग्यता का विकास। नंबर 3, वास्तविक एवं अवास्तविक में अंतर की योग्यता का विकास। नंबर 4, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की योग्यता का विकास। नंबर 5, परिकल्पनाओं को विकसित करने की योग्यता का विकास। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालकों में हाइपोथेटिक डिडक्शन रीजनिंग की क्षमता का विकास हो जाता है। जब बालक किसी समस्या को सुलझाना चाहता है, तब वह पहले उसे सामान्य तरीके से सुलझाने का प्रयास करता है, परंतु यदि वह समस्या को सरल अथवा सामान्य तरीके से नहीं सुलझा पाता है तो वह उन्हें विशिष्ट तरीके से सुलझाने का प्रयास करता है और तब वह सरल एवं विश्लिष्ट तरीके से अंतर को स्पष्ट करने में सक्षम हो जाता है। परिणामतः वह एक नवीन परिकल्पना का निर्माण करता है। वह इस परिकल्पना को सिलसिलेवार ढंग से क्रमबद्ध तरीके से वास्तविक जगत के साथ संबद्ध करता है। नंबर 2, वाक चिंतन, प्रोपोर्शनल थाट। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की यह दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। चूंकि इस अवस्था के बालकों का भाषा विकास समुचित ढंग से हो जाता है, अतः वह अपनी अभिव्यक्ति अच्छे प्रकार से कर सकता है। अब वह संकेतों को भी भली भांति समझने लगता है। वह भाषा के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझा लेता है। अब भाषा उसके समस्या सुलझाने एवं विचारों को स्पष्ट करने का सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम बन जाता है। भाषा बालक प्रत्यक्षों तथा प्रत्यक्षीकरण के आधार पर अपने चिंतन का विकास कर लेता है। पियाजे ने प्रोपोर्शनल थाट से संबंधित अनेक प्रयोग किए। इनमें से यह प्रयोग काफी प्रभावशील है, जो बालक के भाषा विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बालकों अथवा किशोरों को पॉकर चिक्स का एक बंडल दिखाया तथा उससे संबंधित कथन बताया। अब उन किशोरों अथवा बालकों से यह प्रश्न पूछा गया कि यह कथन सही है, गलत है या निश्चित है। उन्होंने पॉकर चिप को अपने हाथों में छुपा लिया तथा उनसे उनके रंगों के बारे में पूछा गया। जैसे अभी जो चिप मैंने आपको दिखाई थी, वह लाल रंग की थी या लाल रंग की नहीं थी। इस प्रकार उसने दूसरा प्रश्न पूछा गया, मेरे हाथ में जो चिप है वह हरे रंग की है और हरे रंग की नहीं है। Either the chip in my hand is red or it is not red. The chip in my hand is green or it is not green. वे बालक जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नहीं थे, उन्होंने इसका गलत जवाब दिया क्योंकि उन्हें वाक्य संरचना का सही सही ज्ञान नहीं था, जबकि किशोरों ने इसका सही सही उत्तर दे दिया। कारण स्पष्ट है कि उन्हें आइदर आर अथवा एंड के बारे में पूरा ज्ञान था। उन्हें यह पता था कि आइदर आर कहाँ लगेगा और एंड का प्रयोग कब किया जाएगा। पृष्ठ संख्या 335। नंबर 3, अमूर्त चिंतन का प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थाट। बालक जब भी किसी चीज अथवा घटना के बारे में अमूर्त चिंतन करता है तो वह आत्म केंद्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, बल्कि स्वयं ही चिंतन में मगन रहता है और चिंतन में ही समस्या का समाधान ढूंढता है। मगर बालक यह भी सोचता है कि यदि वह समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया तो दूसरे बालक क्या कहेंगे, अवश्य ही उसका मजाक उड़ाएंगे। इस प्रकार बालक के मस्तिष्क में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जिसे पियाजे ने नंबर 1 काल्पनिक श्रोता, नंबर 2 व्यक्तिगत भ्रम की संज्ञा दी है। नंबर 1 काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस। काल्पनिक श्रोता से तात्पर्य है कि किशोर हमेशा यह सोचते हैं कि वे ही लोगों के केंद्र बिंदु हैं, लोग उन्हीं के बारे में सोचते हैं, लोग उसकी क्रियाकलापों पर नजर रखते हैं, परिणामस्वरूप वह बहुत अधिक स्वयं के प्रति चैतन्य हो जाता है। दूसरे लोग उसकी निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, अतः वह बहुत अधिक सचेत हो जाता है। अतः वह उचित समय जब माता पिता एवं शिक्षक बालक को सही दिशा निर्देश दें, उनका मार्गदर्शन करें तथा स्वस्थ आलोचनाओं के द्वारा उसके इंद्रिय दमन का प्रयास करें। नंबर 2, व्यक्तिगत भ्रम। किशोर वय के बालक अक्सर यह सोचते हैं कि वे विशिष्ट एवं अनोखे हैं। वे अपनी बातों को, विचारों को, चिंतन को, अपनी बुद्धि को, तर्क को, सूझ को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वे सोचते हैं कि वे सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, परंतु दूसरे लोग उसको महत्व नहीं देते हैं, उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उनके विचारों को महत्व नहीं देते हैं और ऐसी दशा में बालक के पथ भ्रष्ट होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। बालक बच्चलन एवं कुमार्गामी हो जाता है। ग्रीन एटल ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यक्तिगत भ्रम हो जाता है। इसके कारण कई बालक अल्पावस्था में ही मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, वे यौन व्यभिचारों में लिप्त हो जाते हैं तथा बाल अपराधी बन जाते हैं। कई लड़कियां अपने माता पिता की अवज्ञा कर अपने प्रेमी के संग भाग जाती हैं और शादी कर लेती हैं। कल्पना श्रोता एवं व्यक्तिगत भ्रम उस से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश कर जाता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उसमें अमूर्त चिंतन, तर्क, ध्यान, स्मरण, विश्लेषण, वर्गीकरण आदि मानसिक क्षमता का विकास होता है तो ये अवस्थाएं स्वतः ही धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो जाती हैं। पियाजे द्वारा वर्णित उपरोक्त चारों विकास की अवस्थाओं में निरंतरता एवं संबद्धता पाई जाती है और प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व की अवस्था से अधिक संबंधित एवं आश्रित है। पृष्ठ संख्या 336, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मात्र एक नज़र में। 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उच्च स्तर के संक्रिया का निर्माण करना, तार्किक चिंतन प्रारंभ करना, चिंतन, तर्कन, विश्लेषण, वर्गीकरण आदि में शुद्धता एवं परिष्कृत आना, अमूर्त चिंतन द्वारा विभिन्न प्रकार के समस्याओं को सुलझाना, गणित एवं विज्ञान के विषयों पर खोज करना, स्वयं की समस्याओं का निराकरण करना एवं दूसरों की समस्याओं को सुलझाना, पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों में भाग लेना, परिकल्पनाओं को विकसित करने की योग्यता का विकास करना, वास्तविक एवं अवास्तविक में अंतर की योग्यता का विकास करना, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की योग्यता का विकास करना। पियाजे के सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ पियाजेस थियरी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। पियाजे ने बालक के विकास को समझा है तथा मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मगर आज के बाल मनोवैज्ञानिक ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतों की कठोर आलोचना की है। उनका ऐसा मानना है कि पियाजे ने शिशुओं एवं स्कूल पूर्व बालकों की क्षमताओं को बहुत ही कम करके आंका है, जबकि वे इससे कहीं अधिक विकासात्मक कार्यों को संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान में 2.5 से 3 वर्ष का बालक क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण करना, अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनंसिएशन करना सीख जाता है। वह धड़ल्ले से कविताएं याद कर लेता है। यही स्थिति उसके लिखने के क्रम में भी देखी जा सकती है। वह पहाड़ा भी सीख जाता है। वह आज के बदलते परिवेश में वातावरण के साथ शीघ्रता से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, परंतु यह सब बालकों के उचित शिक्षण प्रशिक्षण एवं पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करता है। आज बालक शीघ्रता से सूचनाओं अथवा विचारों को ग्रहण करता है, समझता है, चिंतन करता है और तर्क करता है, इसलिए इसे 21वीं सदी के बालक की संज्ञा भी दी जाती है। पृष्ठ संख्या 337, संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। शारीरिक, मानसिक, गामक, बौद्धिक, संवेगात्मक आदि विकास की भांति संज्ञानात्मक विकास की भी अनेक विशेषताएं होती है। संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। नंबर एक, संज्ञानात्मक विकास के निश्चित प्रारूप होते हैं। संज्ञानात्मक विकास की सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके एक निश्चित प्रारूप होते हैं। सभी बालकों का संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित प्रारूप के अनुसार होता है। हाँ, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आनुवंशिक आदि विभिन्नताओं के कारण संज्ञानात्मक विकास में भी थोड़ी बहुत भिन्नता अवश्य ही देखने को मिल जाती है, परंतु फिर भी संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित प्रारूप के आधार पर ही होती है। जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अस्पष्टता से अस्पष्टता की ओर, सामान्य से जटिल की ओर ही पाया जाता है। नंबर दो, संज्ञानात्मक विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आकर्ष फ्रॉम ग्रोस टू माइक्रो। संज्ञानात्मक विकास की दूसरी प्रमुख विशेषता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना। बालक पहले स्थूल चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात सूक्ष्म ज्ञान को ग्रहण करते हैं। जैसे बालक पहले उन चीजों को जानकारी प्राप्त करते हैं जो मूर्त होते हैं, जिन्हें वे देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका वे स्वाद चख सकते हैं। जैसे बालक पहले अपनी माँ को देखकर पहचानने लगता है, वह माता को देखकर हाथ पैर पटकने लगता है और इस प्रकार का हाव भाव प्रदर्शन करने लगता है कि माता आए और उसे गोद में उठा ले। परंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वह माँ की विभिन्न मुद्राओं को समझने लगता है। अब वह आसानी से यह समझ जाता है कि माँ खुश है अथवा नाराज, गुस्से में है या हंसी की मुद्रा में है, और फिर बालक उसके चेहरे के हाव भाव को देख कर अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करता है। बालक पहले अपनी आवश्यकताओं की वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जैसे रबर, पेंसिल, स्कूल बैग, पेन, कलर आदि। फिर धीरे धीरे वह किताब के चित्र को देखकर समझता है, बाद में वह उन्हें पढ़कर समझने लगता है। अतः स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर एवं साधारण से जटिल की ओर होता है। 3 से 4 वर्ष का बालक विभिन्न प्रकार के सब्जियों का नाम, फूलों का नाम, पशु पक्षियों का नाम, फलों का नाम याद कर लेता है। 5 से 6 वर्ष का बालक कविताएं याद कर लेता है। अब वह चुटकुलों को भी समझने लगता है। वह पेंसिल से कुछ ड्राइंग भी बना लेता है। तब उसे ड्राइंग इतने अस्पष्ट एवं सुंदर नहीं होते हैं, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें निखार आता है और ड्राइंग सुंदर बनता जाता है। नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। संज्ञानात्मक विकास की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होना। बालक प्रारंभ से किसी वस्तु, चीज, व्यक्ति, घटना अथवा सूचना को सामान्य रूप से देखता है। जैसे जब बालक आकाश में झिलमिलाते तारों एवं चंद्रमा को देखता है तो उसे बड़ा मजा आता है। ये प्राकृतिक चीजें उसे बड़े ही लुभावनी एवं आनंददायी लगती हैं। इसी प्रकार जब वह बरसात की पहली बौछार को धरती पर गिरते देखता है तो आनंद से मग्न हो जाता है। वह इसे सामान्य घटना मानता है और इन घटनाओं से अपनी खुशी का इजहार करता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, वह इन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है। वह यह समझने का प्रयास करता है कि तारे रात में ही क्यों झिलमिलाते हैं, बरसात क्यों होती है, आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है, आदि आदि। अर्थात अब वह घटनाओं को केवल सामान्य घटना नहीं समझता है, बल्कि उन्हें विशिष्ट घटना समझकर उनका गहन अध्ययन करता है, उसके बारे में चिंतन करता है, संगी साथियों से तर्क करता है, शिक्षण में शिक्षकों के विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछता है। जब तक बालक इन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये प्रश्न उनके मन मस्तिष्क में हिलोरे लेते रहते हैं और वे उन्हें ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर सीन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह सच है कि सभी बालकों का संज्ञानात्मक विकास एक जैसा, एक ही दर से, एक ही समय पर नहीं होता है, क्योंकि हर एक बालक का वंशानुक्रम भिन्न होता है। उनकी शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक विकास आदि में भी भिन्नता होती है। यहाँ तक कि एक ही माता के कोख में पले बढ़े और एक ही वातावरण में पाले पोछे गए दो जुड़वा बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भी पर्याप्त भिन्नता देखी गई है। किसी बालक में श्रवण शक्ति अधिक है तो किसी की कल्पना शक्ति, किसी के ध्यान शक्ति में तो किसी बालक में सृजन शक्ति, किसी बालक में तर्क शक्ति अधिक है तो किसी में वाक एवं विश्लेषण शक्ति। अतः स्पष्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण ही संज्ञानात्मक विकास में भी भिन्नता पाई जाती है। नंबर 5, संज्ञान का संचय होता है। कॉग्निशन इज कुमुलेटिव। बालकों में संज्ञानात्मक विकास रातों रात नहीं होता है और ना ही बालक एकाएक ज्ञानी एवं बुद्धिमान हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे एवं क्रमानुसार होती है। बालकों में विभिन्न प्रत्यय संबंधी ज्ञान एक एक करके मस्तिष्क में संचय होते रहते हैं। जैसे जब बालक को लाल, पीला, हरा, नीला आदि रंगों का ज्ञान हो जाता है, तभी वह आसमानी, भूरा, बैंगनी आदि रंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसी प्रकार से वह पहले चौकोर, गोल, लंबा, छोटा आदि प्रत्ययों के संबंधों में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। बाद में वह षटकोण, अष्टभुजा, आयत, वर्ग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पुराने ज्ञान के साथ ही बालक नवीन ज्ञान को सीखते रहते हैं और ये ज्ञान उनके मस्तिष्क में संग्रह होते रहते हैं। इसी प्रकार उनका ज्ञान भंडार दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण बढ़ता रहता है। परंतु यदि बालक यह सोचते हैं कि उनके पुराने ज्ञान गलत एवं भ्रामक हैं तो वे इन्हें मस्तिष्क से निकाल देते हैं और शुद्ध, उपयोगी एवं लाभदायी ज्ञान सीखते रहते हैं। नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन टीचिंग एंड गाइडेंस। सभी बालकों में ज्ञान सीखने की, उन्हें अर्जित करने की प्रकृति प्रदत्त होती है। यह अलग बात है कि कुछ बालकों में यह ज्ञान क्षमता अधिक होती है तो कुछ में कम। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि यदि बालकों को सही समय पर समुचित शिक्षण की व्यवस्था करके उन्हें दृश्य श्रव्य विधि से पढ़ाया जाए तो वे जल्दी सीख जाते हैं तथा उन्हें विभिन्न वस्तुओं के संबंध में जानकारी मिल जाती है। बालक जब विद्यालय जाने लगते हैं तो उन्हें सुनियोजित पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनकी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, ध्यान शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास किया जा सकता है। भले ही कितना ही तीव्र बुद्धि का बालक क्यों ना हो, जब तक उसे नहीं पढ़ाया लिखाया जाता, सही शिक्षण व्यवस्था नहीं की जाए, सही दिशा निर्देश नहीं दिए जाएं, तब तक उनका संज्ञानात्मक विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, उनका ज्ञान भंडार सीमित हो जाता है। वह शुद्ध शुद्ध वाक्य रचना भी नहीं कर सकता है। वह पढ़ना लिखना तक नहीं सीख सकता है। अतः अस्पष्ट है कि संज्ञानात्मक विकास में शिक्षण एवं निर्देशन का अमूल्य स्थान है। पृष्ठ संख्या 339, नंबर 7, संज्ञानात्मक विकास तथा विकास के अन्य पहलू परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद ऑर्डर अदर डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का शारीरिक, क्रियात्मक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक आदि विकास से गहरा नाता रिश्ता है। वे परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। जैसे यदि बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ है अथवा वह लंबे समय से बीमार है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी देर से होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब तन बीमार होता है तो मन स्वतः ही बीमार हो जाता है। बालक में कुछ भी करने की, कुछ भी सीखने की इच्छा व ललक होती है। वह दुखी एवं खिन्न रहता है। वह क्रोधी एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। वह संवेगात्मक रूप से दुखी व उदास रहने लगता है। फलतः उसका सामाजिक समायोजन भी गड़बड़ा जाता है। इसी प्रकार गामक विकास मोटर का भी संज्ञानात्मक विकास से गहरा संबंध है। जब बालक के हाथों व उंगलियों की स्थूल एवं सूक्ष्म मांसपेशियां विकसित होती हैं, तभी वह लिखने, चित्रकारी करने, पेंटिंग करने जैसे ज्ञान का अर्जन एवं विकास कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक विकास तथा विकास के अन्य पहलू परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। नंबर 8, संज्ञानात्मक विकास विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। संज्ञानात्मक विकास में बालक द्वारा जो भी कुछ सीखा जाता है वह भूतकाल एवं वर्तमान काल इन दोनों के आधार पर ही सीखा जाता है। बालक का मस्तिष्क जो कुछ भी ग्रहण करता है उसे दोनों के आधार पर ही सीखा जाता है। वह पुरानी युक्ति से जोड़ता है और फिर अपने तर्क, कल्पना, चिंतन, स्मरण एवं विश्लेषण से नवीन युक्ति का निर्माण करता है और तब इन दोनों में समन्वय स्थापित करता है। जैसे यदि बालक पूर्व में घोड़ा देखा है परंतु वह ऊंट नहीं देखा है, तो बालक ऊंट को देखकर झट से उसे कूबड़ वाला घोड़ा बताता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि इस घोड़े के बड़े कूबड़ और लंबी गर्दन है। परंतु जब उसे बताया जाता है कि यह घोड़ा नहीं ऊंट है, जो रेगिस्तान में पाया जाता है और जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसके गद्देदार पैर होते हैं, लंबी गर्दन होती है, तो बालक पुनः अपने चिंतन, स्मरण, तर्कन, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के द्वारा इन दोनों में भेद करने लग जाता है तथा ऊंट से संबंधित नवीन ज्ञान को अर्जित करता है। अतः संज्ञानात्मक विकास विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग होता है। पृष्ठ संख्या 340। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं, कॉग्निटिव एबिलिटीज इन चाइल्डहुड। नंबर एक, संज्ञानात्मक अन्वेषण। जब बालक पैदा होता है तो उसे अपने वातावरण के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं होती है। वह अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ होता है, परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगती है, वह अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण को समझने लगता है। वह वातावरण उसके लिए अर्थपूर्ण लगने लगता है। 0 से 1 माह का बालक दृष्टि के प्रति संवेदनशील होता है। वह तीव्र रोशनी में आंखें बंद कर लेता है। इसी प्रकार 7 से 8 माह का बालक दूध एवं नारंगी के जूस से अपने स्वाद इंद्रियों के माध्यम से अंतर समझने लगता है। वह दूध से ऊब जाता है और नारंगी के रस के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करता है, जो वह अपने हाव भाव एवं मुखाकृति में परिवर्तन करके व्यक्त करता है। 3 से 4 माह का बालक उस दिशा में अपना सिर मोड़ लेता है जिस ओर से संगीत की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि तब तक उसकी श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है। इतना ही नहीं, वह अपनी त्वचा के माध्यम से सर्दी गर्मी को महसूस करता है। ज्ञानेंद्रियों के विकास से उसमें तर्क, चिंतन, स्मरण, ध्यान, विश्लेषण आदि का बोध होता है। अब वह अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। नंबर 2, क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। बालकों में संज्ञानात्मक विकास में गामक क्रियाओं का भी अमूल्य योगदान है, क्योंकि इसके द्वारा वह न केवल अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना सीखता है, वरन व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विकास भी गामक विकास के द्वारा ही होता है। जिन बालकों का जितना जल्दी क्रियात्मक विकास होता है, उतना ही जल्दी उनके स्थूल एवं सूक्ष्म मांसपेशियों में शक्ति एवं परिपक्वता आती है। फलतः वे उतना ही जल्दी बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, स्वयं खाना खाना, वस्त्र बदलना, लिखना, चित्रांकन करना आदि सीख लेते हैं। वे नवीन कौशलों को सीखते हैं। मस्तिष्क की तंत्रिकाएं एवं कोशों में विकास से उनकी स्मरण, ध्यान, तर्क, चिंतन, विश्लेषण आदि शक्तियों का विकास होता है। फलतः बालक नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है और उसके माध्यम से वह आत्मनिर्भर बनता है। उसे स्व या आत्म को समझ पाने में भी क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर 3, पढ़ने लिखने की योग्यता, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी। संज्ञानात्मक विकास में पढ़ने लिखने की योग्यता का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालक जब बड़ा हो जाता है और वह पढ़ने लिखने योग्य हो जाता है, तब वह किताबों को पढ़कर उनसे ज्ञान अर्जित करता है। किताबों में छपे सुंदर चित्र उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। वे चित्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान अर्जित करते हैं। जिन बालकों को जितना अधिक पढ़ने लिखने का शौक होता है, उनका ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ता है और वे सामाजिक समायोजन भी जल्दी ही करना सीख लेते हैं। कहानियों, कविताओं, लोक कथाओं को पढ़ने से बालक में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास होता है। उनकी विचारधारा, मनोवृत्तियां एवं आदतें बदलती रहती हैं। वे प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए बालकों को चंपक, नंदनवन, छोटू मोटू, जंगल का राजा एवं अन्य कहानियों की किताबें पढ़ने को दी जानी चाहिए। इससे उनके ज्ञान का तो विकास होता ही है, नवीन चीजों के बारे में जानने में भी जिज्ञासा बढ़ती है। पृष्ठ संख्या 341। पढ़ने के साथ साथ बालकों में लिखने के गुण का भी विकास करना चाहिए। लिखने से शुद्धता एवं परिपक्वता आती है तथा बच्चा भूलता कम है, इसलिए कहा गया है, राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट। बालक जिन चीजों को पढ़ता है, यदि वह उन्हें लिखता है भी है, तो उनकी ध्यान स्मरण एवं तर्क शक्ति बढ़ती है। यद्यपि बालक लिखने से घबराते हैं और लिखना पसंद नहीं करते हैं, परंतु उनमें लिखने के कौशल व कला का विकास करना चाहिए। नंबर 4, प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वे अपनी जिज्ञासा की शांति प्रश्न पूछकर करते हैं। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में ही बालक प्रश्न पूछने लग जाते हैं। उन्हें वातावरण में घटित होने वाली सामान्य क्रियाएं भी बड़े अजूबे लगते हैं। वे उनसे संबंधित तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, जैसे पक्षी आकाश में क्यों उड़ता है, तोता का रंग हरा क्यों होता है, मैं आकाश में तोते की तरह क्यों नहीं उड़ सकता, कौवे का रंग काला क्यों होता है, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं, यदि हम गुलाब के फूल को तोड़ लेंगे तो क्या होगा, क्या गुलाब का पौधा रोने लगेगा, छिपकली दीवार पर कैसे चलती है, मैं इस तरह दीवार पर क्यों नहीं चल सकता, मेरी दादी गोरी हैं पर मैं क्यों काला हूँ, पापा इतने लंबे क्यों हैं, बर्फ ठंडा क्यों होता है, आदि आदि। बालक न केवल आसपास घटित होने वाली घटनाओं से अचंभित होता है और उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है, बल्कि वह स्वयं के बारे में जानने में भी रुचि लेता है, जैसे मेरे बाल कब बढ़ेंगे, मैं पापा की तरह कब बड़ा होऊंगा, आदि आदि। अतः माता पिता एवं शिक्षकों का यह परम कर्तव्य है कि वे बालकों के प्रश्नों का सही सही जवाब दें, उन्हें प्रश्न पूछने पर डांटे फटकारे नहीं बल्कि उनका सही सही उत्तर बताएं। इतना ही नहीं, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। प्रश्न पूछने से उसकी जिज्ञासा शांत होती है, साथ ही वह भ्रामक झूठी एवं तथ्यहीन बातों से बचता है। उसे जीवन संबंधी अनेक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। सही समय पर सही प्रश्न पूछने एवं उससे उत्तर जानने से बालकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रश्नों के सही उत्तर देने से बालक का चित्त शांत होता है और वे निर्भीक होकर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें प्रश्न पूछते हैं। वह खोजी प्रवृत्ति का बनता है। उससे यह प्रवृत्ति एक दिन उसे महान व्यक्ति की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। 7 से 8 वर्ष के बालक सबसे अधिक प्रश्न पूछते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वे स्वयं ही प्रश्न पूछना कम कर देते हैं, क्योंकि अब वे किताबों से बहुत कुछ जान लेते हैं और अधिकांश प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही ढूंढ लेते हैं। नंबर 5, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। बालकों में संज्ञानात्मक विकास में सामान्यीकरण का भी अमूल्य स्थान है। बालक प्रायः सामान्य वस्तुओं के बारे में अत्यंत आसानी एवं सहजता से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को देखकर वे यह समझ जाते हैं कि ये पशु हैं, इनके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती हैं और 2 कान होते हैं। इसी प्रकार वे कोयल, कौवा, तोता, हंस, गौरैया आदि को देखकर पक्षी के संबंध में सामान्यीकरण द्वारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अब वह समझ जाते हैं कि आकाश में उड़ने वाला जीव जिसके पंख होते हैं वे पक्षी कहलाते हैं। 2 वर्ष की अवस्था में बालकों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पृष्ठ संख्या 342। नंबर 6, चिंतन योग्यता, थिंकिंग एबिलिटी। चिंतन एक प्रकार की उच्च संज्ञानात्मक योग्यता है जिसका विकास उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। चिंतन के माध्यम से बालक कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर लेता है। वह अपनी चिंतन, कल्पना एवं तर्क से नवीन ज्ञान अर्जन कर लेता है तथा कहानियाँ, कविताएँ, चुटकुले, लेख आदि लिखता है। वह अपनी कल्पना से कागज पर सुंदर सुंदर चित्रों को उकेरता है। इस प्रकार बालक इन गुणों से विभूषित होकर एक दिन महान लेखक, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार आदि बनता है और समाज एवं राष्ट्र को नई दिशा, नई चेतना प्रदान करता है। चिंतन से बालक क्रियाशील बनता जाता है। नंबर 7, तर्क योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी। तर्क चिंतन की सबसे ऊंची योग्यता है, तर्क योग्यता। तर्क योग्यता क्या है? संबंध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि विचार करके निर्णय लेने की क्षमता ही तर्क योग्यता कहलाती है। तर्क योग्यता के माध्यम से बालक पुराने अनुभव के आधार पर वर्तमान परिस्थिति के संबंध में सोचता है, विचारता है। तर्क योग्यता से बालक अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है। यद्यपि तर्क शक्ति का अनुकरण तो शैशवावस्था से ही हो जाता है, परंतु 3 से 4 वर्ष की अवस्था में दृष्टिगोचर होने लगता है। 7 से 8 वर्ष का बालक अपने मनोभावों को, अपने विचारों को, अपनी व्यथा को तर्क के माध्यम से समझने लगता है। अतः चिंतन एवं तर्क ऐसी योग्यता है जिसका विकास बालकों में अवश्य होना चाहिए। शिक्षकों का यह दायित्व तो है कि वे बालकों को तर्क के लिए प्रेरित करें। नंबर 8, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। कल्पना भी एक उच्च स्तर की संज्ञानात्मक योग्यता है। कल्पना के माध्यम से ही बालक नवीन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। वह उसे अपने मस्तिष्क में देखता है, वह भूत एवं भविष्य के बारे में सोचता है। वह कल्पना की उड़ाने भरकर कभी आईपीएस बनना चाहता है तो कभी डॉक्टर तो कभी इंजीनियर, कभी वह किरण बेदी की तरह पुलिस अधिकारी बनना चाहता है तो कभी कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में उड़ान भरना चाहता है, कभी शाहरुख खान की तरह महान फिल्मी कलाकार बनना चाहता है तो कभी सचिन तेंदुलकर की तरह सफल क्रिकेटर। बालक अपनी कल्पना लोक में जब विचरण करता है तब वह अपने आप को सबसे ऊंची श्रेणी में खड़ा पाता है। वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी कहना है, बालकों में कल्पना शक्ति का अवश्य ही विकास होना चाहिए, उसे भविष्य के बारे में सुखद कल्पना करनी चाहिए और सुंदर स्वप्न देखना चाहिए। जब तक बालक सुंदर स्वप्न नहीं देखेगा तब तक उसे साकार करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। कल्पना की सृजन का आधार होता है। जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति कमजोर होती है उसमें सृजनात्मकता भी कमजोर होती है। नंबर 9, स्मरण योग्यता मेमोरी एबिलिटी। संज्ञानात्मक विकास की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है स्मरण योग्यता। किसी व्यक्ति वस्तु घटना सूचना आदि के संबंध में याद रखना ही स्मृति स्मरण कहलाती है। पृष्ठ संख्या 343। बालक जो कुछ भी अपने आस पड़ोस के घटनाओं को घटते हुए देखता है और उससे ही वह अनुभव प्राप्त करता है, वह मस्तिष्क में एकदम मिटता नहीं है बल्कि उसका एक बड़ा भाग मस्तिष्क में संग्रहित रहता है। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत याद रहती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को सड़क घटना में छटपटाते हुए मरते देखना, बाढ़ का दृश्य, आग दुर्घटना में किसी बालक को फंसे देखना आदि आदि। ऐसे घटनाएं मानस पटल पर इस प्रकार से जीवंत चित्र उकेर देती हैं जो मिटाए नहीं मिटते हैं। कई बार जैसे ही इन विषयों पर चर्चा होती है व्यक्ति की वे घटनाएं जीवंत हो उठती हैं। जब बालक को कविता या कहानी पढ़ना लिखना सिखाया जाता है तो वह उन्हें याद कर लेता है। जब बालक से यही कविता 2-3 दिन बाद सुनने को कही जाती है तो उन्हें गाकर सुना देता है, अर्थात वह कविता अचेतन मन से जाकर संग्रहित हो जाती है और जब उन्हें पुनः सुनाने के लिए कहा जाता है तो वह चेतन मन में आ जाता है और बालक झट से उन्हें गाकर सुना देता है। इसी प्रकार जब बालक को किसी दर्शनीय स्थल जैसे दिल्ली का लाल किला या आगरा का ताजमहल अथवा मैसूर का गार्डन घुमाने के लिए ले जाया जाता है तो बालक उन्हें देखकर अत्यंत खुश हो जाता है और उसकी स्मृति उसके मानस पटल पर अंकित हो जाती है। अब जब बालक को 2 से 4 माह बाद उसी चित्र को दिखाया जाता है तो उसकी स्मृति ताजी हो जाती है और वह उन चित्रों को तुरंत पहचान लेता है। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं मात्र एक नज़र में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एट अ ग्लांस। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं स्मरण योग्यता, चिंतन योग्यता, तर्क योग्यता, सामान्यकरण, प्रश्न पूछना, पढ़ने लिखने की योग्यता, क्रियात्मक विकास, संवेदनात्मक अन्वेषण। पृष्ठ संख्या 344। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास कब होगा, कैसा होगा, कितना होगा, किस प्रकार से होगा, यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नानुसार हैं। नंबर 1, अनुवांशिकता हेरिडिटी। संज्ञानात्मक विकास का मानसिक एवं बौद्धिक विकास से गहरा संबंध है। मानसिक विकास एक जन्मजात योग्यता है, अर्थात बालक तीव्र बुद्धि का होगा या दुर्बल बुद्धि का, इस आधार पर संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। जिन बालकों की बुद्धि तीव्र होती है उनमें संज्ञानात्मक विकास जल्दी एवं अधिक मात्रा में होता है, जबकि जिनकी बुद्धि दुर्बल होती है उनमें संज्ञानात्मक विकास देरी से होता है। नंबर 2, ज्ञानेन्द्रिया। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है ज्ञानेन्द्रियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स। जिन बालकों की ज्ञानेन्द्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जितना अधिक विकसित होती हैं वे उतने ही शीघ्रता से वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके ठीक विपरीत जिन बालकों की ज्ञानेन्द्रियां जितनी कम विकसित होती हैं वे वस्तुओं एवं उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण उतना ही देर से कर पाते हैं, अतः ऐसे बालकों का ज्ञान एवं अनुभव अपेक्षाकृत कम होता है। जरा उस बालक के बारे में सोचिए जो जन्म से ही अंधे हैं, जो वस्तुओं के रंग, आकार, प्रकार आदि के संबंध में सही सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकेंगे। उन्हें रंगों के संबंध में कोई ज्ञान नहीं होगा। इसी प्रकार एक बहरा बालक को गीत संगीत एवं ध्वनि के संबंध में कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उनके श्रवण संवेदांगों में दोष है। इसी प्रकार यदि बालक जन्म से ही गूंगा है तो उसमें भाषा का विकास नहीं हो सकेगा, वह बोलने जैसी सामान्य क्रियाएं भी नहीं कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक विकास में ज्ञानेंद्रियों का अहम स्थान है। नंबर 3, परिपक्वता मैचुरेशन। संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक बालकों के मस्तिष्क में नाड़ी संस्थान में तंत्रिकाओं नर्वस और कोशिकाओं सेल्स में परिपक्वता नहीं आती, तब तक उनमें तर्क चिंतन स्मरण अनुभव वर्गीकरण कल्पना सृजन विश्लेषण आदि क्षमताओं का विकास नहीं हो सकता है। वह वातावरण में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं के बारे में प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता है और न ही वह उन्हें पहचान सकता है। इसी प्रकार वह अमूर्त वस्तुओं के संबंध में प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है। नंबर 4, मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी। जिन बालकों की मानसिक योग्यता अधिक होती है वो वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण अति शीघ्रता से कर लेते हैं। उनकी तर्क शक्ति चिंतन शक्ति स्मरण शक्ति सृजन शक्ति विश्लेषण शक्ति आदि मानसिक क्रियाएं अधिक होती हैं। ऐसे बालक विभिन्न सूचनाओं घटनाओं के संबंध में शीघ्रता से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 345। और फिर उसी के अनुसार अपना सामाजिक समायोजन भी बेहतर ढंग से कर लेते हैं। वे अपनी मानसिक योग्यता से नवीन वस्तु का सृजन कर लेते हैं, मौलिक विचार प्रस्तुत कर लोगों को अचंभित कर देते हैं और वे उनके चहेते बन जाते हैं। नंबर 5, सीखने के अवसर लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जिन बालकों को जितना अधिक सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं उनमें उतना ही अधिक ज्ञान का विकास होता है। यही कारण है कि उच्च आर्थिक एवं सामाजिक परिवार वाले बालकों का संज्ञानात्मक विकास निम्न आर्थिक एवं सामाजिक परिवार वाले बालकों की तुलना में अधिक होता है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार अपने बालकों को पढ़ने लिखने के लिए किताब कापियाँ कलम पेंसिल एवं अन्य आवश्यकता की सामग्री उपलब्ध करवा देते हैं और उन्हें एक दूसरे से पढ़कर एक पुस्तक पढ़ने को दे दी जाती है। अच्छे एवं नामी विद्यालय में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाता है। मनोरंजन के साधन जुटाए जाते हैं, उन्हें पार्क चिड़ियाघर दर्शनीय स्थान आदि घुमाने हेतु ले जाया जाता है। अतः उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है। नंबर 6, मस्तिष्क में विकार ब्रेन डिसऑर्डर। मस्तिष्क में कोई दोष हो जाने से अथवा विकार हो जाने से अथवा चोट लग जाने से बालक वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। कारण स्पष्ट है कि उसके मस्तिष्क में उस वस्तु का सही सही प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इसी कारण वह वस्तुओं के संबंध में सही जानकारी प्राप्त कर पाता है। उदाहरण के लिए यदि बालक के स्मृति केंद्र में चोट लग जाती है और वह भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बालक में स्मरण अथवा याद रखने एवं ध्यान क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार यदि बोध वाले केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो बालक में समझ की कमी हो जाती है। इसी प्रकार एक पागल व्यक्ति किसी भी वस्तु का गलत रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है और वह दूसरों को भी पागल समझता है। नंबर 7, शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में अति प्रमुख कारक है शारीरिक स्वास्थ्य। हम सभी को ज्ञात है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तभी वह मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकेगा और विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं को संपन्न कर सकेगा। उसमें सोचने समझने चिंतन करने याद करने विश्लेषण करने आदि शक्ति का विकास होगा। अस्वस्थ बालक दुखी उदास एवं खिन्न रहता है, वह दिन भर रोता रहता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में स्मरण चिंतन तर्कन आदि मानसिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार जब अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया दोषपूर्ण रहती है विशेषकर थायराइड ग्रंथ की तो बालक का बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास बाधित हो जाता है। यदि बालक किसी गंभीर रोग का शिकार हो जाता है तब वह लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। इस कारण उसमें सीखने के अवसर में भी कम ही प्राप्त होते हैं, परिणामतः उसका मानसिक विकास बाधित हो जाता है। फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास में बालक पिछड़ जाता है। पृष्ठ संख्या 346। नंबर 8, बुद्धि इंटेलिजेंस। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि IQ जितनी अधिक होती है उनकी बौद्धिक योग्यता भी उतनी ही अधिक समुन्नत होती है और उनकी तर्क चिंतन स्मरण विश्लेषण वर्गीकरण आदि योग्यताएँ भी उतने ही अधिक विकसित होती हैं, क्योंकि बुद्धि एवं संज्ञानात्मक विकास में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तीव्र बुद्धि के बालक की स्मरण शक्ति, ध्यान एवं तर्कन शक्ति भी अधिक होती है, जबकि मंद बुद्धि के बालकों में संज्ञानात्मक विकास देरी से होता है। नंबर 9, वातावरण एनवायरनमेंट। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण का अहम योगदान होता है। यद्यपि किसी भी बालक की बुद्धि उसकी आनुवांशिकता से ही प्राप्त होती है, मगर इसका विकास किस सीमा तक होगा, इसका निर्धारण वातावरण पर निर्भर करता है। यदि किसी बालक का पालन पोषण सुंदर, स्वस्थ, उपयुक्त एवं शिक्षित वातावरण से होता है, तो बालक निश्चित ही उसका संज्ञानात्मक विकास साधारण एवं निम्न स्तरीय वातावरण में पलने वाले बालकों की तुलना में अधिक अच्छा व श्रेष्ठ होगा। वातावरण के अंतर्गत निम्न चीजें सम्मिलित होती हैं। रोमन का 1, पारिवारिक वातावरण फैमिली एनवायरनमेंट। रोमन का 2, सामाजिक वातावरण सोशल एनवायरनमेंट। रोमन का 3, विद्यालयी वातावरण स्कूल एनवायरनमेंट। नंबर 1, पारिवारिक वातावरण फैमिली एनवायरनमेंट। पारिवारिक वातावरण का संज्ञानात्मक विकास में अहम योगदान है। वे बच्चे जो उच्च आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के होते हैं और पलते बढ़ते हैं, उनका परिवार, खासकर माता पिता पढ़े लिखे होते हैं तथा उच्च पदों पर आसीन होते हैं, उनके बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है। कारण स्पष्ट है कि ऐसे वातावरण में पढ़ने बढ़ने वाले बालकों को सीखने का अधिक अवसर मिलता है। उनका संपर्क भी पढ़े लिखे लोगों से निरंतर होता रहता है, परिणाम स्वरूप उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है। पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक आते हैं। ए, माता पिता का शैक्षिक स्तर। बी, माता पिता का आपस में मधुर संबंध। सी, माता पिता का बालकों के साथ मधुर संबंध। डी, परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। ई, परिवार के रहने का स्थान गांव अथवा शहर। एफ, परिवार का आकार। उपरोक्त सभी कारक अलग अलग प्रकार से बालक के बौद्धिक विकास को प्रभावित करते हैं। रोमन का 2, सामाजिक वातावरण सोशल एनवायरनमेंट। बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक वातावरण का भी अमूल्य स्थान है, क्योंकि बालक परिवार के बाद विद्यालय तथा विद्यालय के बाद समाज के संपर्क में आता है। वह समाज के विभिन्न संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण करके अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। उदाहरण के लिए, जैसे बालक बड़ा होता है, वह समाज के लोगों के संपर्क में आता है तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, दूसरों के क्रियाकलापों को देखता है, उनके अनुभवों को सुनता है और उनका लाभ उठाता है। पृष्ठ संख्या 347। समाज के लोग किस तरह के हैं, इस बात पर बालक का संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। यदि समाज में अधिकांश लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो बालक को जप तप, ध्यान एवं धर्म के प्रति ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार यदि समाज में बालक व्यवसायी लोग अधिक हैं, तो बालक को व्यवसाय से संबंधित ज्ञान बढ़ेगा। यदि समाज में चोर, उचक्के, पॉकेटमार, लफंगे अधिक हैं, तो बालक इन गुणों को सीख लेगा, क्योंकि संगत का प्रभाव व्यापक रूप से बालक पर पड़ता है। जैसा कि कहा गया है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगत बैठिए तैसे ही फल दीन। इसी प्रकार यदि समाज में पशुपालक, कृषक आदि अधिक हैं और उनकी रुचि पशुपालन एवं कृषि के क्षेत्र में है, तो बालक को खेती बाड़ी से संबंधित ज्ञान का विकास होगा। रोमन का 3, विद्यालयी वातावरण स्कूल एनवायरनमेंट। बालकों के संज्ञानात्मक विकास में गुरु, शिक्षक एवं विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता है। जब बालक 3 से 4 साल का हो जाता है, तो वह पढ़ने लिखने व विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय जाने लगता है। वहां उसे विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, आयु आदि के बालकों से मिलना जुलना होता है। बालक उन बालकों के साथ संपर्क स्थापित करता है तथा अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। बालक के पाठ्यक्रम, शिक्षक के पढ़ाने के ढंग, खेलकूद, पुस्तकालय आदि से बालकों को विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। शिक्षक उनके ज्ञान के विकास में मदद करते हैं। वे उन्हें सुंदर घड़े की तरह उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उनके अंदर छिपी प्रतिभा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन्हें आकर्षक तरीके से पढ़ाते लिखाते हैं। फलतः बालकों का रुझान पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ता है, बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। नंबर 10, समायोजन क्षमता एडजस्टमेंट कैपेसिटी। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास का समायोजन क्षमता से गहरा नाता रिश्ता है। जिन बालकों का स्कूल, घर, परिवार व समाज के लोगों के साथ अच्छा समायोजन होता है, उनका संज्ञानात्मक विकास भी अधिक अच्छा होता है, क्योंकि वे लोगों के संपर्क में आते हैं और उनसे नई नई बातों को सीखते हैं। साथ ही उनका ज्ञान सुदृढ़, सुनियोजित एवं अस्थायी होता है। इसके ठीक विपरीत, जिन बालकों का समायोजन अपने घर, परिवार, समाज एवं स्कूल के साथियों के साथ अच्छा नहीं होता है, उनमें ज्ञान का विकास तो कम होता ही है, साथ ही उनका ज्ञान मिथ्या एवं भ्रामक भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 348, नंबर 11, शिक्षण प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। यद्यपि संज्ञानात्मक विकास बालक की बौद्धिक क्षमता, अनुवांशिकता, वातावरण आदि कारकों पर निर्भर करता है, परंतु बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए उचित शिक्षण प्रशिक्षण अति आवश्यक है। जिन बालकों को सही समय पर उचित शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, सही उम्र में उन्हें विभिन्न वस्तुओं, चीज़ों के बारे में बताई जाती है और उनका प्रत्यक्षीकरण करवाया जाता है, तब उनका ज्ञानार्जन अधिक होता है। वैसे भी बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, अतः वे 7 से 8 वर्ष की अवस्था में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। उनके मन में प्रश्नों का ढेर होता है, जिनका उत्तर वे अपने माता पिता एवं शिक्षकों से चाहते हैं। यदि उनके प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दिया जाता है, तब उनका संज्ञानात्मक विकास श्रेष्ठ एवं उत्तम होता है। अतः बालकों को उचित प्रशिक्षण द्वारा उनके संज्ञानात्मक विकास में बढ़ोतरी की जाती है। नंबर 2, आयु विभेद, एज डिफरेंस। एक नवजात शिशु अपने आसपास के वातावरण से बिल्कुल ही अनजान रहता है। वह केवल रोना जानता है, जिसे जिस करवट लिटा दिया जाता है उसी करवट पड़ा जाता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाता है। पहले बालक अपनी आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जैसे माँ, दूध, बोतल, स्लेट, पानी, गिलास, कपड़ा, रुमाल आदि। फिर वह उम्र बढ़ने के साथ साथ विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। उसमें चिंतन, तर्क, स्मरण, विश्लेषण, ध्यान आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होने लगता है। प्रारंभ में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेता है, फिर बाद में वह अमूर्त चिंतन करने लगता है। यह सब उम्र बढ़ने के साथ साथ ही संपन्न होती है। अतः स्पष्ट है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक अंगुलियों पर। संज्ञानात्मक विकास, अनुवांशिकता, परिपक्वता, सीखने के अवसर, शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, इसके अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, उच्च प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था, ज्ञानेंद्रियां, मानसिक योग्यता, मस्तिष्क में चोट अथवा दोष विकार, बुद्धि, समायोजन क्षमता, आयु विभेद। पृष्ठ संख्या 349, संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं, मात्र एक नज़र में। संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं, विकास के अन्य पहलू अंतः संबंधित होते हैं। विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग, शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर। संज्ञान का संचय, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, एक निश्चित प्रारूप।